आत्म साक्षात्कारी महान गुरु का संग प्राप्त करना मुश्किल है, किंतु वह संग बहुत ही लाभकारी है। आप अगर भक्ति भाव पूर्वक ईमानदारी से प्रार्थना करोगे तो स्वयं आपके पास वे आएंगे। आप अगर आत्म साक्षात्कारी गुरु की सेवा करेंगे तो आपके मोक्ष की समस्या हल हो जाएगी। अगर पावनकारी आचार्य की सेवा में जीवन बिताओगे तो जीवन कृतार्थ हो जाएगा। महात्माओं का संग ईश्वर कृपा से ही प्राप्त होता है। गुरु की सेवा करके, आशीर्वाद प्राप्त करके और करने के इच्छुक साधकों को कुसंग से अवश्य दूर रहना चाहिए। राग द्वेष से मुक्त ऐसे गुरु का संग करने से मनुष्य आसक्ति रहित बनता है, उसे वैराग्य प्राप्त होता है, उसमें गुरु के चरण कमलों के प्रति भक्ति जागती है। जो भक्ति भाव पूर्वक गुरु की सेवा करता है वह जीवन के परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। गुरु की सेवा से साधक का मन किसी भी प्रकार के प्रयत्न के बिना ही अपने आप एकाग्र होने लगता है। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा है कि गुरु के बिना ईश्वर प्राप्ति का मार्ग नहीं मिल सकता। स्वयं ईश्वर रूप होने के कारण गुरु साधक को ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में ले जाते हैं, वे उस मार्ग के पथ प्रदर्शक बनते हैं। गुरु ही शिष्य को ऐसा अनुभव करा सकते हैं कि वह स्वयं ही ईश्वर है। दैवी गुणों का विकास करने वाला महान रहस्य गुरु भक्ति में निहित है। गुरु के दर्शन अंधकार का सर्वथा नाश करते हैं और असीम आनंद देते हैं। भगवान स्वयं ही आचार्य के रूप में दिखते हैं, वे मानव के स्वरूप में प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं अथवा ब्रह्मनिष्ठ महान ज्ञानी के रूप में दर्शन देते हैं। सच्चा एवं स्थायी सुख बाहर के नाशवंत पदार्थों से नहीं है, अपितु गुरु शरण योग का आश्रय लेने से मिल सकता है। गुरु भक्ति योग सब विज्ञानों में श्रेष्ठ विज्ञान है। गुरु शरण में आश्रय लेकर प्रेरणा पाओ। जीवन मधुर फूल है जिसमें गुरु भक्ति मीठा शहद है। गुरु की महिमा को पहचान कर उसका अनुभव करो और उनका प्रेम संदेश मनुष्य जाति में फैलाओ। ऐसा करने से गुरु की कृपा आप पर उतरेगी। आंध्र प्रदेश के मंत्रालयम गांव में एक प्रसिद्ध संत हो गए राघवेंद्र स्वामी। उनका एक शिष्य था वेंकण्णा। वह मंद बुद्धि और जिद्दी था, पर गुरुजी के प्रति निष्ठावान, श्रद्धालु और अहोभाव से पूर्ण था। वह अपने गुरुदेव को साक्षात ईश्वर तुल्य मानता था। जब उसकी शिक्षा पूरी हो गई और वह अपने घर जाने लगा तब आज्ञा लेने गुरुदेव के पास गया। उस समय गुरुजी स्नान कर रहे थे। उन्होंने वेंकण्णा को आशीर्वाद दिया और प्रसाद रूप में वही मिट्टी दे दी जिससे वे स्नान कर रहे थे। वेंकण्णा के लिए वह मिट्टी नहीं, महाप्रसाद था। उसने उसे कपड़े में बांधा और वहां से चल पड़ा। रास्ते में रात हुई तो इसने एक गांव में किसी ब्राह्मण के घर के बाहर बरामदे में विश्राम किया। उस ब्राह्मण की पत्नी को रात्रि में प्रसूति की पीड़ा हो रही थी। अजनबी जगह होने से वेंकन्ना को नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे एक ब्रह्म राक्षसी दिखाई दी। वह घर के अंदर जाना चाह रही थी, पर दरवाजे के पास गुरुजी की दी हुई मिट्टी की पोटली रखी होने से वह अंदर नहीं जा पा रही थी। उसने वेंकन्ना से कहा कि इस कपड़े को यहां से हटा लो। वेंकन्ना ने गांठ खोलकर थोड़ी सी मिट्टी घर के चौखट पर बिखेर दी। ब्रह्म राक्षसी बोली, तुमको जो चाहिए वह दूंगी, लेकिन इसको हटा दो। वेंकन्ना ने उसकी परीक्षार्थ कहा, सोना ला कर दो। उसने क्षण भर में सोना ला दिया। ब्रह्म राक्षसी ने कहा, अब तो मुझे जाने दो, मैं अंदर जाकर जन्म लेने वाले बच्चे को खाऊंगी। वेंकन्ना ने चुटकी भर मिट्टी ब्रह्म राक्षसी पर फेंक दी, जिससे उस राक्षसी का देह नष्ट हो गया और उसकी सदगति हो गई। बाद में वेंकन्ना वही सो गया। सुबह गृह स्वामी ने उनसे परिचय पूछा तो वेंकन्ना ने अपने और रात की घटना के बारे में सब बताया। ब्राह्मण ने कृतज्ञता पूर्वक कहा कि आज तक मेरे घर जो भी बच्चे जन्मे उनमें से एक भी नहीं बचा, आज आपके कारण हम इस पीड़ा से बच गए। वेंकन्ना ने कहा, यह तो मेरे गुरु जी का प्रसाद और प्रताप है। जब सदगुरु द्वारा स्पर्शित मिट्टी रूपी प्रसाद से मासूम बालक को जीवनदान मिल सकता है, ब्रह्म राक्षसी की सदगति हो सकती है, तो सदगुरु के आत्म अनुभव को स्पर्श कर उनके श्रीमुख से निस्रित अमृत वचन रूपी महाप्रसाद पाने वाले गुरुदेव के बताए मार्ग पर दृढ़ता से चलने वाले शिष्य की 84 के चक्कर से मुक्ति हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य है।